Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Akhidanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
आपको न्योता दिया गया समधी के वहां से कि पार्टी है, और समधी का फोन आया कि आपको पार्टी में अवश्य आना ही है, लेकिन आप कभी बाहर का खाते नहीं हो। अब मन में क्लेश होगा, क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही, क्यों, बेटी वहां ब्याही हुई है, दुख हो रहा है कि भाई मुझे तो जाना नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, आप जाते हो और पार्टी में जाते हो तो कपड़े भी कैसे पहनने चाहिए पार्टी के अनुरूप। ऐसा सीधा साधा कपड़े पहन के जाएंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उनको संतोष देने के लिए आपके मन में भले कुछ भी हो आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हो। और समधी ने कहा, हाँ जरा भोजन लीजिए। हाँ हाँ ले रहे, दिखावे के लिए भी हम थाली हाथ में पकड़ते हैं, अंदर से मालूम ये बनाने वाले कुछ ठीक नहीं होंगे, किस तरह से बना होगा क्या पता, दिखाने के लिए भी हम थाली हाथ में रखते हैं। यह सब क्या है, अंदर तो क्लेश हो रहा है, तो आप वास्तव में क्या कर रहे हो, तप ही कर रहे हो। तप का अर्थ ये नहीं कि एक पांव लगा दिया ध्रुव की तरह, यह भी एक प्रकार का तप ही है। इस तरह के तप से क्या होगा, अंतकरण की शुद्धि होगी। मुख्य तप तो यह ही है गृहस्थियों के लिए, विशेषतः साधु संत भी तप करते हैं। ये सब तप जो शास्त्र में आए हैं, वह तप किसको लक्षित करते हैं, ओमकार को ही लक्षित करते हैं। इसलिए कहा, तपांस सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम् चरन्ति। जिसकी इच्छा से मुमुक्षु व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है। यहां ब्रह्मचर्य के दो अर्थ है, एक अर्थ तो आप सबको पता है, दूसरा एक अर्थ है गुरुकुल में 12 साल तक निवास करना। समझिए, सब जगह 12 साल ही क्यों, क्योंकि विद्या की पूर्ति 12 साल में होती है, और गुरु जो ग्रह है वह ग्रह 12 साल में एक बार वापस अपने निश्चित स्थान पे आता है घूमकर। इसलिए गुरु की कृपा होगी तभी ये ज्ञान हो सकता है, इसलिए 12 साल की अवधि बतलाई है। तो गुरुकुल में 12 साल निवास करना पड़ेगा, इसलिए मुमुक्षु जन है वह गुरुकुल में ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करते हैं। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। उसी पद को मैं संक्षेप में कह रहा हूं, लेकिन जरा विस्तार करिए ना, विस्तार नहीं हो सकता क्योंकि ओमकार की बात बहुत ऊंची है, विस्तार करने जाएंगे तो दिनों लग सकते हैं, इसलिए यहां यमराज ने संक्षेप शैली में बताया। तीन प्रकार की शैली है, एक है व्यास शैली, विस्तार करना, जैसे राम सीता जी को वन में ढूंढने के लिए गए, ये एक वाक्य है, इसको विस्तार से कहना है तो राम धीरे धीरे दबे पांव रोते हुए और सब वृक्षों को पूछते हुए, पक्षियों को पूछते हुए, धीरे धीरे लक्ष्मण जी के साथ, वह भी दुखी है, दबे पांव प्रस्थान कर रहे हैं। ये क्या है, व्यास शैली, विस्तार किया, जैसे महाभारत है व्यास शैली है। दूसरी एक शैली है, वह है संक्षेप शैली, इतना बड़ा विस्तार शॉर्ट में बता दिया, जैसे महाभारत है वह संक्षेप में क्या है, श्रीमद् भगवद गीता। उससे भी एक तीसरी शैली है, सूत्र शैली, ब्रह्म सूत्र जो है वह सूत्र शैली है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी अथ क्या, अतः क्या, ब्रह्म क्या, उसकी जिज्ञासा वो बाद में वर्णन होगा, लेकिन ये सूत्र बता दिया। तो तीन प्रकार की शैली है, उसमें से यहां यमराज ने संक्षेप शैली का स्वीकार किया। मैं आपको संक्षेप में कहूंगा, क्या कहोगे? ओम इति एतत्, ओमकार। मैंने अभी अभी कहा कि ओमकार भी पांचवा महावाक्य है। क्यों? यह जो ओमकार है वह ओमकार भी तत्पद और त्वम पद को बतलाता है। ओम का अर्थ है तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जो जो भी तीन है वह सब हम ओमकार में ले सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारी तीन अवस्था है, और अवस्था के जो अभिमानी है विश्व, तेजस, प्राज्ञ जीव की अवस्था है, और ईश्वर की भी अवस्था है वैश्वानर, और फिर बाद में क्या है, हाँ, हिरण्यगर्भ है, और तीसरा है ईश्वर। ये तीनों अलग अलग है, विश्व, तेजस, प्राज्ञ जीव की अवस्था है, और वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, वह तीनों अलग अलग है, लेकिन उसमें से भाग त्याग लक्षणा के द्वारा दोनों की एकता यह ओमकार से समझी जाती है। इसलिए ओमकार को पांचवा महावाक्य कहा। उतना ही नहीं, ये ओमकार जो है अक्सर हम लोग लिखते हैं ऐसा, यहां भी शायद होगा, नहीं, अच्छी बात है, ओमकार कभी लिखा नहीं जाता, लेकिन अक्सर लोग ऐसा ओम लिखते हैं, यूं आड़ी टेढ़ी जो होती है ना लकीरें, लकीर ओमकार नहीं है। तो कोई संप्रदाय वाले ऐसा मानते हैं कि ओ ऐसा लिखो और तीन और फिर म ऐसा हलंत लिखो, ओम, यह सच्चा ओमकार है, वह भी ओमकार नहीं है। तो फिर स्वामी जी ओमकार क्या है? ओमकार एक शब्द है और वह ध्वनियात्मक प्रतीक है, इंग्लिश में कहते हैं साउंड सिंबल, वो ध्वनियात्मक प्रतीक है, वह कभी लिखा नहीं जाता, वह शब्दों से ही समझाया जाता है। लेकिन अक्सर 99% लोग यह ही समझते हैं कि ऐसी आड़ी टेढ़ी लकीर वह है ओमकार, लेकिन वो ओमकार नहीं है। यह जो ओमकार है, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई सबसे पहले यह ओम शब्द की उत्पत्ति हुई, मतलब उस परमात्मा से ओमकार की सबसे पहले उत्पत्ति हुई। इसलिए हम कहते हैं ओमकारश्चात शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिकौ भौ ओम अथ ओम अथ ओम अथ। अथ ओम नहीं कहा, ओम अथ कहा है, इसलिए ओमकार सबसे पहले उत्पन्न हुआ है। और ये जो ओमकार है वह अ, उ और म तीन शब्द है। अब देखिए ये जो ओमकार है उसमें अ शब्द बोलेंगे तो हमारा मुंह खुलेगा। जरा ध्यान दीजिए यहां पे, इस थोड़ी बात समझने जैसी है, जो नींद में हो वो उठ जाए। जब हम अ शब्द बोलते हैं तब हमारा मुंह खुल जाता है, और म शब्द बोलेंगे तो मुंह बंद हो जाएगा। और अ से लेके म तक सभी वर्ण जो है, संस्कृत वर्णमाला का या जितने भी शब्द है, फिर अंग्रेजी के कहो या हिंदी के कहो, वह सब अ और म के अंदर ही आ जाता है। ये तो आप स्वीकारते हैं ना भाई, मुंह खुला और मुंह बंद हुआ, उसके बीच में आप जो शब्द प्रयोग करेंगे वह अ और म के बीच में आ जाएंगे। जितने जितने भी वर्णमाला के अक्षर है वह किसी व्यक्ति को पदार्थ को या परिस्थिति को या नाम आकार को ही सूचित करेगा। जैसे मान लीजिए ये है ऐनक, तो ऐनक में ए न अ क अ ये शब्द है, ये शब्द अ और म के बीच में आ गए, ठीक है कि नहीं भाई, आप लोग समझ रहे हो ना। तो अ और म के बीच में जितने भी शब्द आते हैं वह सब यह जगत को बतलाते हैं। तो पूरा जो जगत है वह शब्दात्मक हो गया, और वह जो शब्द है वह शब्द अ उ और म के बीच में है, तो पूरा जगत अब क्या हो गया, ओमकार के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए यह पूरा ब्रह्मांड है वह सिर्फ ओमकार ही है। इसलिए यमराज ने कहा कि हे नचिकेता, ये ओम जो है वह ही है परम पद, और वह ओमकार यह परम पद का वाचक है, और ये जो परमात्मा है वह है वाच्य। यह मैं अभी आपको संक्षेप में कहने वाला हूं, ऐसा यमराज ने नचिकेता को कहा। अब यमराज और आगे कहते हैं कि ये ओंकार क्या है। एतद्ध्येवाक्षरम् ब्रह्म, एतद्ध्येवाक्षरम् परम्, एतद्ध्येवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत्। यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है। इस अक्षर को ही जान के जो मुमुक्षु जिसकी जैसी इच्छा करता है वह ही उसका हो जाता है, या उसे वह ही प्राप्त हो जाता है। भाष्यकार यहां कहते हैं यह अक्षर जो है, अक्षर ही अपर ब्रह्म है और यह अक्षर ही पर ब्रह्म है। अब अक्षर माने न क्षरति इति अक्षर, जिसका कभी क्षरण या नाश नहीं होता उसे कहते हैं अक्षर। यह जो ओंकार है वह कैसा है, तो वह अपर ब्रह्म का भी वाचक है और पर ब्रह्म का भी वाचक है। ये मंत्र उपासना संबंधित है, इसीलिए है, क्योंकि यहां भाष्यकार ने कहा है जो अपर ब्रह्म मानकर ओंकार की उपासना करेगा उसे वह फल प्राप्त हो जाएगा, और जो मुमुक्षु पर ब्रह्म मानकर उपासना करेगा तो वह जो जानना चाहता है परमात्मा वह उसे प्राप्त हो जाएगा। तो ओंकार की तीन मात्रा है अ उ और म, उसमें एक एक शब्द को लेकर उपासना शास्त्रों में बतलाई है, लेकिन उच्चार तो अगर करना पड़ेगा तो ओम ऐसा ही उच्चार करना पड़ेगा, लेकिन उसमें अ को ध्यान में रखकर अ की कल्पना करके आप उपासना करेंगे तो उनका भी फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा, मनुष्य लोक के अंदर आपको जन्म प्राप्ति होगी, और साथ में आपके जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य फिर सत्य ऐसे गुण भी आएंगे। लेकिन यह सिर्फ अमात्रा की उपासना करके, और उसके साथ में ब्रह्मा जी का भी ध्यान करना है, क्योंकि अ उ म माने ब्रह्मा विष्णु और महेश। फिर म की सिर्फ आप मात्रा को लेकर उपासना करेंगे, उच्चार करना पड़ेगा ओम, लेकिन उस वक्त म की कल्पना करेंगे और विष्णु जी की कल्पना करेंगे तो उसका भी फल आपको मिलेगा। क्या फल मिलेगा, स्वर्ग लोक में। ये शास्त्र की जो उपासना है वह बतला रहा हूं। और फिर ऊ की उपासना कर, ऊ का संबंध विष्णु जी के साथ होगा और म का संबंध होगा शंकर जी के साथ। तो जो उपासक जैसी इच्छा करता है वह उसे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जिसको स्वर्ग की इच्छा नहीं है, कोई लोक की अपेक्षा नहीं है, अगर उसे सिर्फ मोक्ष की अपेक्षा है तो उसकी भी है व्यवस्था। क्या व्यवस्था है? तो जो उपासक परब्रह्म को चाहता है, अगर ओमकार का सहारा लेकर, शब्द का सहारा लेकर, ये जितने भी शब्द है वह शब्द नाम और आकार ही है, और नाम और आकार जिससे उत्पन्न हुए हैं वह परमात्मा है, ऐसा अगर लय चिंतन करेगा तो वह उपासक परमात्मा को जान लेगा। तो अपर ब्रह्म वाला यानी कार्य ब्रह्म वाला उपासना करता है तो उसे यह जो चाहता है वह प्राप्त होगा, और परब्रह्म जो चाहता है उसे वह उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ओंकार सर्वश्रेष्ठ साधन है उपासना के लिए। वह अब मंत्र नंबर 17 में बतलाने जा रहे हैं। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यह ओंकार ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए सर्व प्रकार के आलंबनों में से सर्वसे श्रेष्ठ आलंबन है, और उससे अन्य और कोई आलंबन नहीं है। इस रहस्य को अच्छी तरह से जानने वाला मुमुक्षु या साधक श्रद्धा और प्रेम से उसके आश्रय में रहता है, वह सचमुच परमात्मा की प्राप्ति का परम गौरव प्राप्त करता है। ये ओंकार जो है सबसे श्रेष्ठ आलंबन बतलाया। अक्सर लोग अपने उपास्य देवता का आलंबन लेकर उपासना करते रहते हैं। किसी को राम पसंद है, किसी को कृष्ण पसंद है। क्यों ऐसा क्यों? पुष्पदंत जी कहते हैं, रुचि नाम वैचित्र्या रुजुकुटीर नाना बथजुषाम। सबकी रुचि अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, उस आदमी बचपन में उसकी मां मर गई, बड़ा हुआ अनाथ आश्रम में, और भाग्यवशात किसी महात्मा उसे मिल गए, तो वह आदमी उपासना किसकी करेगा? दुर्गा माता की। क्यों? उसको बचपन में मां का प्यार नहीं मिला, तो स्वाभाविक है वह मां के प्यार के लिए दुर्गा माता की उपासना करेगा। जिसके चित्त में वैराग्य है वह उपासना करेगा भगवान शंकर की। जो अपनी बॉडी बनाना चाहता है, आपको पता है सलमान खान की उपासना नहीं करेगा, हनुमान जी की करेंगे। तो देखिए जिसकी जैसी रुचि उसके मुताबिक उपासना करेंगे, लेकिन आलंबन तो अवश्य लेंगे ही, आलंबन के बगैर नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो ओंकार है वो सबसे श्रेष्ठ आलंबन कहा गया। एक है गायत्री मंत्र है, वह भी आलंबन है। भूर्भुवस्व बोलते हैं, धियो यौन प्रचोदयात, उससे भी ये श्रेष्ठ कहा गया। क्यों श्रेष्ठ कहा गया स्वामी जी? श्रेष्ठ इसीलिए कहा गया कि वह सब मंत्रों का सार है। जितने भी देवी देवता है, जितने भी नाम आकार है, उसका वह सार है, अधिष्ठान है। इसलिए ओंकार का आलंबन जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो स्वामी जी हम भी ऐसा ऐसा करें, ओम का ओम की शुरुआत कर दे, ऐसी गलती मत करना। सिर्फ आप दीर्घ ओंकार का उच्चारण करेंगे, जैसे ओ, सिर्फ ये उच्चार करेंगे शास्त्रीय पद्धति के अनुसार, तो आपके चित्त के अंदर वैराग्य प्रकट हो जाएगा। लेकिन ओंकार के साथ किसी इष्ट देवता को जोड़कर आप उच्चार करेंगे, जैसे ओम नमः शिवाय, या तो फिर ओंकार के ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो ये गृहस्थी के लिए ठीक है, सन्यासियों के लिए सिर्फ ओमकार का उच्चार करने का विधान है। लेकिन समझिए अगर हमने किया तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, आपके चित्त में वैराग्य प्रकट हो जाएगा, और वैराग्य प्रकट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आप सन्यास ले लेंगे। इसलिए गृहस्थियों को यह ओमकार, सिर्फ अकेला ओमकार यह उच्चारण करने का विधान नहीं है। एक सज्जन थे ऐसे अहमदाबाद में, तो उसने ये सब सुना एक महात्मा से, और उसने, मैं ओमकार का उच्चारण करता हूं, ये महात्मा भले बोले, मैं जरा देख तो लू क्या होता है। और उसने सिर्फ ओमकार का उच्चारण शुरू किया शास्त्रीय पद्धति से, और फिर उसके दिमाग में खलबली मचने लगी। किसी भी घर की वस्तुओं में, व्यक्तियों में उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता गया। घर के लोग हैरान, क्या करें। फिर एक महात्मा के पास ले गए कि महाराज ये देखिए, ये ओमकार की उपासना हर रोज करते हैं और उसकी हालत आज ऐसी हो गई है। महात्मा ने उनको पूछा, भाई क्या करते हो? बोला, मैं उपासना करता हूं ओमकार की। लेकिन कैसे करते हो? किसी देवता का नाम जोड़ते हो कि नहीं? नहीं, देवता का नाम नहीं जोड़ता मैं सिर्फ ओमकार की उपासना करता हूं। बोला, आप नहीं कर सकते, जो सन्यासी होता है वह ही ओमकार की उपासना कर सकता है। इसीलिए जब सन्यास देते हैं तो जो पहले गायत्री मंत्र करता था, अब पूरी गायत्री है अब ओमकार के अंदर समाविष्ट हो गई। इसलिए सन्यासी को ओमकार जपने का विधान है और गृहस्थी इत्यादि को गायत्री मंत्र जपने का विधान है। इसलिए जो मुमुक्षु है, जिसको सिर्फ मोक्ष चाहिए, वह ओमकार की उपासना अवश्य कर सकता है। लेकिन जिसको मोक्ष नहीं चाहिए, उसको तो किसी देवता विशिष्ट के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। शंकर को जोड़ना पड़ेगा, ओम राम रामाय नमः ऐसा जोड़ना पड़ेगा। लेकिन वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण शरणम मम ऐसा मंत्र दिया। कई लोग ऐसा कहते, क्यों ऐसा किया? इसीलिए वल्लभाचार्य जी को भी मालूम था कि यह ओमकार जो है वो बहुत पवित्र है। अगर भविष्य की पीढ़ी अपनी पवित्रता नहीं रखेगी और ओमकार का जप करेगी तो उसको फल नहीं मिलेगा। उसको ध्यान में रखकर वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण शरणम मम ऐसा मंत्र दिया। ओम श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहा, श्री कृष्ण शरणम मम कहा। जितने भी मंत्र है वह वैदिक ओमकार, वैदिक मंत्र जो है वह ओमकार पूर्वक ही होते हैं। कोई भी मंत्र हो उसके साथ अगर ओम आगे जुड़ गया तो वह वैदिक ही होगा। क्यों? ओमकार उतना पवित्र है। और इसलिए यहां उनको कहा, सब आलंबनों में से सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उससे ही वेद की उत्पत्ति हुई है। प्रणव सर्व वेदेशु, उतना ही नहीं महर्षि पतंजलि ने भी कहा, तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा का वाचक प्रणव है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ आलंबन है ओमकार। इसलिए कहा, एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम। ये पर और अपर ब्रह्म विषयक होने की वजह से वह परम है, श्रेष्ठ है। इस आलंबन को प्राप्त करके या जान के वह जो साधक है वह क्या करता है, ब्रह्मलोक के अंदर प्रस्थान करता है। लेकिन कौन? जो अपर ब्रह्म वाला होगा उसे तो जिस चीज की आवश्यकता होगी वह वो प्राप्त करेगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ ओमकार की उपासना कर रहा है, सन्यासी है, लेकिन कुछ वजह से उसके चित्त के अंदर कोई दोष ऐसा आ गया कि जिसकी वजह से वह तत्व विचारणा नहीं कर सकता है, या तो कोई प्रतिबंध ऐसा आ गया कि जिसकी वजह से वह तत्व की विचारणा में सामर्थ्यवान नहीं है और उसका शरीर खत्म हो गया, अब ज्ञान तो हुआ नहीं उसको। यहां कुछ प्रतिबंध है जिसकी वजह से इस जन्म में ज्ञान नहीं हुआ, गति कहां होगी उसकी? वह तो पूरा जीवन उसका ओंकार की उपासना में ही गया, गति कहां होगी? ब्रह्मा जी के लोक के अंदर। और ब्रह्मा जी के लोक के अंदर जब इस ब्रह्मांड का प्रलय होगा तब ब्रह्मा जी सबको बुलाएंगे, जितने भी वहां लोक वाले हैं सबको बुलाएंगे और सबको उपदेश देंगे। कौन सा उपदेश? तत्त्वम असि। जो यहां छूट गया वहां उसकी मुक्ति हो जाएगी, उसको फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। इसीलिए जिसका प्रतिबंध है यहां पे, उस सन्यासी या उपासक उसकी गति होगी ब्रह्मलोक के अंदर, ब्रह्मा जी के लोक के अंदर। इसीलिए भाष्यकार यहां कहते हैं कि उस व्यक्ति ब्रह्मलोक के महियते, ब्रह्मलोक के अंदर वह भाग्यवान होता है। इतना कहने के बाद ये तीन मंत्र जिसमें ओमकार का उपदेश यमराज ने किया मन और मध्यम अधिकारी के लिए, अब यमराज उपदेश करने जा रहे हैं उत्तम अधिकारी के लिए। किसका उपदेश करेंगे? वही परब्रह्म का, वही ब्रह्म का, वही परमात्म तत्व का वह स्वयं यमराज उपदेश करने जा रहे हैं। तो समय मुझे इजाजत नहीं देता, कल हम यह आत्मस्वरूप या अपना जो आपा है वह कैसा है यमराज के मुख से ही सुनेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।